Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్య విరచిత్ శివభక్తి శివోత్తప్రోత స్తోత్ర శివానంద లహరి కే ఆధార్ పర్ సాయంకాలీన్ సంత ప్రవచన్ మాలా కీ యే 10 దివసీయ శృంఖల का आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 51।
भृंगिच्छा नटनोत्कट करिमद ग्राही स्फुरन माधवा लादो नादयुतो महासित बपुः पञ्चेशुणा चादृतः सत्पक्षासुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो राजीवे भ्रमराधिपो विहरताम् श्रीशैलवासी प्रभो कारुण्यामृतवर्षिणम् घनविपद् ग्रीष्मच्छिदाकरमठम् विद्यासस्य फलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिम् नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयम् चञ्चज्जटामण्डलम् शम्भो वाञ्छति नीलकन्दर सदा त्वां मे मनश्चातकः आकाशे न शिखी समस्तपणिनाम् नेत्रा कपालीनता नुग्राही प्रणभोपदेश निनदही के कीति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां गणरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकम् तं नीलकण्ठं भजे सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकरा घातप्रभूतानक ध्वानो वारिदगर्जितं दिवि सदां दृष्टिच्छटा चञ्चला भक्त ಆಪ್ತಾನಾಂ ಪರಿತೋಷ ಬಾಷ್ಪ ವಿತತಿರ್ ಬೃಷ್ಟಿರ್ಮಯೂರೀ ಶಿವಾ ಯಸ್ಮಿನ್ನುಜ್ವಲ ತಾಂಡಲಂ ತಾಂಡವಂ ವಿಜಯತೆ ತಂ ನೀಲಕಂಠಂ ಭಜೆ ಆದ್ಯಾಯಾಮಿ ತತೇಜಸೆ ಶ್ರುತಿಪದೈರ್ ವೇದ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಾತ್ಮನೆ ತ್ರಿಜಗತಃ ಸಂರಕ್ಷಣೋದ್ಯೋಗಿನೇ ಧ್ಯೇಯಾಖಿಲ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸುರಗಣೈರ್ ಗೇಯಾಯ ಮಾಯಾವಿನೇ ಸಮ್ಯಕ್ತಾಂಡವ ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿ ಸಂಭವೇ ಭೃಂಗಿಚ್ಛಾ ನಟನೋತ್ಕಟ ಕರಿಮದೌ ಗ್ರಾಹೀ ಸ್ಫುರನ್ ಮಾಧವಾ ಹಲಾದೋ ನಾದಯುತೋ ಮಹಸಿತ ವಪುಹು ಪಂಚೇಷುಣಾ ಚಾದೃತಃ ಸತ್ಪಕ್ಷ ಸುಮನೋಪನೇಷು ಸಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮದೀಯೇ ಮನೋ ರಾಜೀವೇ ಭ್ರಮರಾಧಿಪೋ ವಿಹರತಾಂ ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸಿ ಪ್ರಭೋ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇ ಆದಿಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಕೋ ಕೈ ಉಪಮಾ ಸೆ ಉಪಮಿತ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಉನ್ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ಗಾನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಯಹಾಂ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಕೋ ಏಕ್ ಭ್ರಮರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಉಪಮಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ ಭ್ರಮರ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಪುಷ್ಪೋ ಮೇ ವಿಚರಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಪುಷ್ಪ ಕೆ ರಸ ಕೋ ಲೇತಾ ಹೈ ಭ್ರಮರ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಕೋ ಸುನಾ ರಹೆ ಹೈ आप लोग भागवत प्रेमी हो भागवत सुनते हो कई बार जब उद्धव पहुंचे ब्रज में कृष्ण के संदेश को लेकर और ब्रजवालाएं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित थी जमुना के किनारे बैठकर कृष्ण वियोग जन्य संताप से वह विलाप कर रही थी उसी समय उद्धव वहां पहुंचे उन ब्रजवालाओं ने उद्धव को देखा कि नहीं देखा भगवान जाने कहते हैं उन ब्रजवालाओं के बीच में एक भ्रमर पहुंच गया उड़ता हुआ भ्रमर पहुंच गया ब्रजवालाओं ने देखा उस भ्रमर को और उस भ्रमर को सब बात सुनाई। उद्धव भी वहीं खड़े थे, सुनाया तो भ्रमर को, कहा तो भ्रमर को, प्रत्यक्ष कहा है भ्रमर को और सुनाया है उद्धव को। सारी बात उद्धव सुनते रहे। भ्रमर से उन लोगों ने जो बात कही है, उद्धव बड़े प्रेम से सुनते रहे और लक्ष्य करके उद्धव को ही कहा था, प्रत्यक्ष भ्रमर को कहा है, परोक्ष रूप में उद्धव को कहा है। इसी तरह भक्ति सिद्धांत में ऐसा होता है, आदिगुरु शंकराचार्य जी यहां प्रत्यक्ष भ्रमर को संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं शिवजी को, मानो शिवजी ही भ्रमर बनकर वहां घूम रहे हों और उन्हीं को शंकराचार्य से सुना रहे हैं। यह अन्योक्ति अलंकार है। इसमें अन्य को कहकर अन्य को सुनाना यह अन्योक्ति अलंकार। शब्द पर ध्यान दो, भृंगिच्छा नटनोत्कट करी मदग्राही स्फुरन माधवा। भ्रमर और भ्रमरी होता है ना, मिस्टर को भ्रमर और मिसेज को क्या बोलोगे, भ्रमरी है? और भ्रमरी को यहां भृंगी कहा गया है। भ्रमर को भृंग कहते हैं तो भ्रमरी को भृंगी, ये शब्द प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने। यह भृंगी भ्रमरी के लिए है। जिस समय भ्रमर अपनी भ्रमरी को देखता है, भृंगी को देखता है, प्रेम का भाव जग जाता है। स्वाभाविक ही है, प्रेमी जिस समय अपने प्रेयसी को देखता है तो उसके हृदय में एक प्रेम का भाव जग जाता है, प्रकट होता है। देखने की बात छोड़ दो, स्मरण करता है तो भी प्रेम का भाव जग जाता है। इसीलिए भक्त के हृदय में भगवान को स्मरण करता है तो हृदय में भक्ति का भाव जग जाता है। तो भ्रमी को, भृंगी को यानी भ्रमरी को प्रसन्न करने के लिए भृंग भ्रमर नाचने लगता है, अपने हृदय के भावों को अंग प्रत्यंग के माध्यम से भ्रमरी के सामने, भृंगी के सामने प्रकट करता है। वह प्रकट करना ही भ्रमर का भृंगी को रिझाने के लिए नाचना है। भृंगी के सामने भ्रमर नाचता है कि नहीं, ये तो आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि आप बगीचा में नहीं रहते हो, फूल आपके चारों तरफ नहीं है। जहां फूल के बगीचा हो वहां जाओ तब ये दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे भी सामान्य हमारे घरों में कबूतर तो रहते ही है ना, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा है दुनिया में, वो प्रेम के प्रतीक हैं, यही मानते हैं सब लोग। जब कबूतर अपने कबूतरी नजदीक आती है तो उसके सामने वह कई बार गीत गाता हुआ नाचता रहता है, चारों तरफ घूमता है और गीत गाता है, गुटुर गूंज शुरू करता है, है? ये कहानी तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, प्रतिदिन घर में आपके सामने नाचने लग जाता है कबूतर। उसके मन में यह संकोच नहीं होता है कि तू कोई देखेगा तो क्या कहेंगे। इसी तरह भृंगा यानी भ्रमर, भृंगिच्छा नटनोत्कटः, भृंगी के इच्छा के अनुसार नाचने में यानी नृत्य करने में स्वतः प्रवृत्त होने वाले भ्रमर। भ्रमर क्यों नाचता है? तो भृंगी की इच्छा अनुसार नाचता है, उसको खुश करने के लिए नाचता है। इसलिए यह भ्रमर को कहा भृंगिच्छा नटनोत्कटः। भ्रमर का दूसरा विशेषण है करिमदग्राही। करी माने हाथी, करी माने हाथी, करी है नहीं, फिर कड़ी बोलोगे, फिर कड़ी न बोल देना, री है, हड़ी नहीं है, करी मदा, करी माने हाथी। गर्मी के समय में हाथी जो होता है उसके मस्तक से मद निकलता है, और जिस समय उसके हाथी के मस्तक से मद निकलता है तो हाथी के सिर में बहुत मडराता है, क्योंकि उस मद को वह ग्राही है, मदक ग्राही है, यानी हाथी के सिर में से निकलने वाले उस मद को वह ग्रहण करता है, यानी उसके रसपान करने के लिए हाथी के सिर के पास चारों तरफ मडराता रहता है। कौन? भ्रमर। करिमदग्राही ही, यह दूसरा विशेषण हो गया किसका? भ्रमर का। पहला विशेषण हो गया भृंगिच्छा नटनोत्कटः, उत्कट माने उत्तम, भृंगी की इच्छा अनुसार नाचने में नाच दिखाते हैं, उत्तम नृत्य करने वाले होने के कारण भ्रमर को नटनोत्कट, भृंगिच्छा नटनोत्कट ये कहा। करिमदग्राही, जंगल में बहुत से बहुत फूल खिले हुए हों तो भी यदि कोई मदमत्त हाथी वहां घूम रहा हो, भ्रमर को पता चल जाता है तो सारे फूलों का मकरंद को छोड़कर वह हाथी के मद के लिए वह लालायित होता है, कूद पड़ता है, और हाथी परेशान होता है उसके लिए। स्फुरन माधवाल्लाद, माधव शब्द का अर्थ होता है बसंत ऋतु। माधव शब्द का अर्थ वसंत ऋतु है। स्फुरन माधवा, अब ये निश्चित है, उद्दीपक है ये बसंत ऋतु, उद्दीपक है, प्रेम का उद्दीपक है ये। और हाथी के सिर में से जो मद निकलता है वो भी बसंत ऋतु आने पर ही निकलता है, और क्योंकि वसंत ऋतु आने पर अनेक प्रकार के फूलों में भी फूल भी खिल जाते हैं, और फूलों में भी मकरंद, अनेक प्रकार के मकरंद तैयार होते हैं, और इसीलिए उसी समय में प्रेमी और प्रेयसी के हृदय में प्रेम का भाव उद्दीप्त होता है। इसलिए वसंत ऋतु श्रृंगार रस प्रदान के लिए है। भ्रमर भी यहां उसको यही श्रृंगार रस के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्फुरन माधवाल्लादः, बसंत ऋतु आने पर जो प्रसन्न होवे, नादयुतो भ्रमर मौन तो उड़ेगा नहीं, भ्रमर जब भी उड़ेगा नाद युतः, गुंजायमान करता हुआ ही उड़ेगा वो, चाहे जिसके पास जाना हो, चाहे हाथी के पास जाना हो, चाहे भृंगी के पास जाना हो, चाहे फूल के पास जाना हो, जब भी उड़ेगा वह नाद युतः, गूं करता हुआ उड़ता है वो। महाशित वपुहु, ये भ्रमर का ही विशेषण है। ये भी शीत माने सफेद, संधि ये करना है, अशीत जो सफेद नहीं है, तो भ्रमर तो सफेद होगा नहीं, भ्रमर कहीं सफेद होगा, भ्रमर तो काला होगा या नीला पना लिया हुआ होगा, लेकिन सफेद नहीं होगा, इसलिए अशीत बपू, जिसका शरीर सफेद नहीं है, है? महाअशीत, काला है। और क्या, गोपियों ने ब्रजबालाओं ने कृष्ण को भ्रमर की उपमा दी है, क्योंकि कृष्ण भी काला है और भ्रमर भी काला है। और कहा है कि हे भ्रमर, तेरा स्वभाव और उस काले के स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, तो जा। वो भी एक गोपिनी को छोड़ता है, दूसरे गोपिनी को, दूसरे को छोड़ता है, तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, तू भी वही करता है, एक फूल को चूसता है फिर दूसरे में जाता है, दूसरे को चूसता है तीसरे में जाता है, है? उस कलुए में और तेरे में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह यहां पर भी शंकराचार्य जी ने कहा, वो भ्रमर असित बपु, काला है तू। पंचे सुना चादृत, स्वाभाविक ही है, जब बसंत ऋतु आता है तो पांच तीर लेकर घूमने वाला वो धड़ाक से घूमता रहता है। पंचेशु, ईशु माने तीर, पंच ईशु, पंचबाण है, कौन है पांच बाण को एक साथ चलाने वाला, और वो कब आता है, तो वसंत ऋतु आता है तब है। पंचे सुना चाद्रिता, कामदेव ने तुमको, तुम्हारा खूब आदर किया है, तुम कामदेव का सहयोगी हो। पंचेशु माने कामदेव, जिसके हाथ में पांच ईशु हैं, बाण हैं, वो पंचेशु। अब उसने उसको मान सम्मान देकर रखा है, क्योंकि वह कामदेव के लिए मदद करता है, प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में वह उद्दीप्त करता है, प्रेम भाव को उद्दीप्त करता है, और वह कामदेव के लिए मदद करता है, सहयोगी है। इसलिए हे भ्रमर, तुम पंचे सुना आदृत हो, और ने तुम्हारा आदर किया हो न किया हो, कामदेव ने तो तुम्हारा खूब मान सम्मान किया है। हाँ, ये जो कथा के समय में मोबाइल फोन करने की जो समस्या है, इससे हम श्रोता लोग अपनी आदत को सुधारना चाहिए। कथा के समय में तो हमारे चिमन भाई कहते हैं, भाई कृपा करके अपने कीमती टेलीफोन का स्विच ऑफ करके रखो, बोलते हैं। शायद माताजी का फोन कीमती नहीं होगा, इसलिए नहीं किया होगा, ऑर्डिनरी होगा। अच्छा बंद कर, कैसे बंद करना है वो मालूम नहीं है नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप प्रेमपुरी में एक क्लास, प्रेमपुरी में अनेक वर्ग चलते हैं प्रेमपुरी आश्रम में अनेक वर्ग चलते हैं, तो वृद्धों को मोबाइल का स्विच कैसे अप करना है, कैसे ऑन करना है, ये प्रशिक्षण का वर्ग भी है, अतिरिक्त क्लास मुझे लगता है चलाना पड़ेगा। तो सावधानी तो यही रखना चाहिए भाई। सत्पक्ष सुमनो बने सुसपुना, सत्पक्ष उसके पक्ष माने पंख, भ्रमर के पंख है सत्पक्ष, क्योंकि वो होगा उसके पक्ष होंगे पंख होंगे तभी वो उड़ पाएगा हो। और उड़ता विशेष करके कहां है, घूमता कहां है, फूलों का जो जंगल है। सुमनो बनेसु, सुमना बनेसु, फूल के जो जंगल है जहां खूब फूल खिल रहे हो, झाड़ी हो, सुमना बनेसु, ऐसा जो भ्रमर यहां तक और तीसरे लाइन चौथे लाइन का भ्रमराधिप, भ्रमराधिप माने सभी भ्रमरों में श्रेष्ठ भ्रमर, राजा भ्रमराधिप, यहां तक तो अन्युक्ति है, भ्रमर के विशेषण ये सब। अब इसके माध्यम से भगवान शिव को कहा जा रहा है। भ्रमर भी अपने भृंगी को देखकर नाचता है, नाचने में कुशल है भ्रमर। अब आप लोग पुराण की कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये प्रसंग मालूम है कि नहीं, अनेक ऋषियां हुए हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में, ऋषियों की कमी नहीं है हमारे यहां, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। वैदिक सनातन धर्म में ऋषियों का बहुत योगदान है, अलग अलग समय में ऋषियों ने तपस्या की, कठोर से कठोर तपस्या की और अपनी साधना के द्वारा परमात्मा को प्रकट किया है, परमात्मा के अवतार को व्यक्त किया है, और उनकी कामना पूर्ण करने के लिए भगवान को, परमात्मा को अनेक रूप धारण करते धरती में आना पड़ा है। तो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में अवतार लेने में प्रेरणा करने वाले भारत भूमि की विशेषता है, ऋषियों की बहुत बड़ा योगदान है। हर अवतार में कोई न कोई ऋषि, कोई न कोई साधक की भूमिका रही है। इसी तरह एक ऋषि की चर्चा आती है पुराण में, ऋषि का नाम ही भृंगी ऋषि है, जैसे श्रृंगी ऋषि हुए उसी तरह भृंगी ऋषि भी हुए। और भगवान शिव के अनेक दूतों में से दो दूत एकदम महत्वपूर्ण हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के दो पार्षद महत्वपूर्ण हैं, जय और विजय। वह स्वर्ग वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए वह पार्षद के रूप में दोनों रहते हैं, वैकुंठ में ही रहते हैं वो, जय और विजय। इसी तरह भगवान शिव के भी दो पार्षद प्रेटेंट हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या कैलाश में वो हमेशा शिव जा रहते हैं, वहीं साथ साथ चलते हैं उन जो गणों का नाम है श्रृंगी और भृंगी। इसलिए मारवाड़ी लोगों की आरती है एक, है। श्रृंगी भृंगी निरत करत है, ये आरती है, मारवाड़ी आरती। हम लोगों के आश्रम में दिल्ली में बीकानेरी आरती बोलते हैं हम उसको, भगवान शिव की आरती है, जिसके सामने श्रृंगी और भृंगी हमेशा नृत्य करते। ये तो भगवान शिव के गण का नाम है भृंगी। दूसरा एक ऋषि का नाम है भृंगी, भृंगी ऋषि। एक समय की बात है कि भृंगी ऋषि को भगवान शिव की नृत्य देखने की इच्छा हुई और उन्होंने तपस्या की, शिव प्रकट हो और अपना नृत्य हमको दिखावे, उनकी इच्छा हो गई तो तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा क्यों ऋषि, क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, अभिलाषा क्या है? तो भृंगी ऋषि ने कहा आपके नृत्य देखने की इच्छा है, आप हमारे सामने नृत्य करो। भगवान श्री कृष्ण भी तो छाछ के लिए नाचते रहे ना ब्रज में, नहीं नाचे? हाँ, कवि ने कविता ही लिख दिया है, देख लो, एक मुट्ठी छछिया छाछ पर वो नाच दिखाते थे। गए जाकर कहा कि हमको छाछ पिला दो, बोले ऐसे छाछ नहीं मिलेगा कृष्ण,